اس پروگرام کے اخراجات جوائس مر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔
ضروری ہے کہ آپ خدا کا شخصی تجربہ کریں۔ آپ خدا کی وفاداری کا تجربہ ایک طریقے سے کر سکتے ہیں کہ قدم بڑھائیں اور مشکلات میں بھروسہ کریں اور جسم کے کاموں پر انحصار کرنے سے انکار کریں۔ آپ اپنے طور پر کچھ وقوع میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ خدا آپ کو بتا رہا ہے کہ اپنی کوشش ترک کر دو تو آپ ایسا ہی کریں، کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ آسان بات یہ ہے کہ ہم وہ کریں جو صرف خدا کر سکتا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ دیر کرتے ہیں، طویل کر دیتے ہیں اور مزید مشکل کر دیتے ہیں۔ کہ خدا کو جانے کہ وہ ثابت کر سکے کہ وہ ہماری زندگی کے لیے کیا کر سکتا ہے، یہ جانے کہ آپ اس میں کون ہیں اور پھر اس کی قدرت کو دیکھیں جو بطور ایماندار مسیح یسوع میں آپ کے لیے میسر ہے۔ آپ کے پاس قوت ہے، پاک روح کی قوت آپ کے لیے ہے۔ اعمال پہلا باب آٹھویں آیت، میں پاک روح کے تعلق سے بات کر رہی ہوں جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہتا ہے اور کبھی چھوڑتا نہیں، اور اس وقت بھی جب آپ زیادہ اچھے نہ ہو تو وہ نہیں چھوڑتا۔ لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ آئیے اب دوبارہ سے دیکھتے ہیں، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلیم اور یہودیا اور سامریا بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ خدا کی قوت جب آپ پر آئے گی تو ہر شخص ہی منات بن جائے گا۔ گواہ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ خدا ہمیں قوت دے گا کہ ہم لوگوں پر مہربان ہوں جیسا کہ وہ چاہتا ہے۔ اس لیے ہم دنیا میں جا سکتے ہیں اور اس کی نمائندگی کر سکتے ہیں اور اندھیرے میں چمک سکتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں وہ آپ کو قوت دے گا کہ طوفانوں میں آپ کو اطمینان حاصل ہو۔ وہ آپ کو قوت دے گا کہ آپ فکر مند نہ ہوں جب آپ کو کسی بھی بڑی مصیبت کا سامنا ہو۔ وہ آپ کو ایمان کی قوت دے گا کہ آپ کے بچے نیک اولاد بنیں گے جبکہ ان کو دیکھ کر آپ کو بالکل بھی کوئی امید نظر نہیں آتی۔ اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جب حالات بہت خراب ہوں، سنیں، میں یہ بات کچھ والدین کے لیے کہہ رہی ہوں جن کے بچے کچھ مشکل میں ہیں، جب حالات بہت خراب لگیں اور یہ تاریک ترین اور بدترین محسوس ہوں تو اس وقت آپ ہمت نہیں ہاریں گے۔ آمین۔ میں نے ایک کہاوت بنائی ہے، جب میں اپنے ٹرینر کے ساتھ ورزش کر رہی تھی، وہ کافی مشکل دن تھا، میں نے پچھلے ہفتے میں ورزش کی اور میں
او خدایا یہ کب ختم ہوگا
تھک گئی تھی۔ اس نے کہا کہ کیا آپ آج ورزش 12 کی بجائے صرف 8 مرتبہ کرنا پسند کریں گی، اور میں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ دن پیچھے ہٹنے کا نہیں ہے۔ اکثر آپ کو روحانی سورما بننا ہوتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ آج کا دن پیچھے ہٹنے کا نہیں ہے، حالات برے ہیں لیکن میں بہتر پر یقین رکھوں گی، مجھے پرواہ نہیں کہ یہ کیا ہے، میں یقین رکھتی ہوں کہ خدا کام کر رہا ہے اور میں اپنے بچوں کے لیے مایوس نہیں ہوں گی۔ میرے باپ نے مجھ سے زیادتی کی، میں نے 40 سال تک ان کے لیے دعا کی اور پھر انہوں نے آخر کار مسیح کو قبول کیا۔ میں ان کے لیے ہر روز یا پورا دن دعا نہیں کرتی تھی یا ایسا کچھ کیا تھا، جب بھی مجھے یہ خیال آتا تو صرف یہ کہتی کہ خدا میں جانتی ہوں کہ تو یہ کر سکتا ہے۔ میں نہیں جانتی کہ تو یہ کیسے کرے گا، لیکن میں یقین رکھتی ہوں کہ تو یہ کر سکتا ہے، مہربانی سے تو انہیں نجات دے۔ یہ لمبی کہانی ہے اور وقت نہیں ہے کہ تفصیل بیان کروں، لیکن مجھے اعزاز حاصل ہوا کہ انہیں مسیح کے پاس لا کر پانی کا بپتسمہ دوں۔ میں جانتی ہوں کہ وہ اس وقت آسمان پر ہے، اس لیے کبھی ہمت نہ ہاریں۔ جب پاک روح تم پر نازل ہوگا، آج رات ہم عبادت کے بعد 5 منٹ انتظار کریں گے، کیا آپ کے خیال میں اتنی دیر ساکت رہ سکتے ہیں؟ چلیں ہم دیکھ لیں گے، آپ حیران ہوں گے۔ کہ ایک چیز ہے جو ہم اکثر نہیں جانتے کہ کیسے کریں، کہ ساکت اور خاموش کیسے رہیں، اور اکثر ہمیں یہ صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنا پڑتی ہے۔ اگر آپ پاک روح کی رہنمائی میں چلنا چاہتے ہیں تو اکثر آپ کو خاموش رہنا ہوگا، آپ کو کچھ دیر انتظار کرنا ہوگا، کیونکہ وہ زیادہ جلدی میں نہیں ہے، ہمیں جلدی ہوتی ہے۔ میں لندن میں ایک میٹنگ میں لوگوں کو بتا رہی تھی، ये कुव्वत से भरपूर और यगानगत वाली इबादत थी। वहां मुख्तलिफ फिरकों के ईमानदार मौजूद थे और एक कैथोलिक पासबान भी था, एक आर्च बिशप ऑफ कैंटरबेरी था और एक वेस्ट मिनिस्टर का बिशप था। और ये पासबान खड़े होकर दुआ करने लगे। इससे पहले उन्होंने बहुत बाबरकत कलाम पेश किया और उन्हें कहा गया कि यगानगत के लिए दुआ करें, और वो स्टेज पर गए और अपना सर झुका दिया और उन्होंने चंद मिनट तक कुछ भी ना कहा। मैं महसूस करने लगी कि मुझे दुआ करने में उनकी मदद करनी चाहिए। मैं सोच रही थी कि क्या उन्होंने मीटिंग चलाने वाले की बात को नहीं सुना कि उन्हें दुआ के लिए बुलाया गया है। इसलिए मुझे उस शख्स के लिए अफसोस हो रहा था जो इबादत चला रहा था। मैं सोच रही थी कि अगर मैं स्टेज पर होती तो कुछ कर रही होती। ये काफी दिलचस्प सूरत हाल थी। और इबादत चलाने वाले ने दोबारा कहा उनका नाम लेकर कि हम यगानगत के लिए दुआ करेंगे, और वो वहां खड़े रहे और बिल्कुल भी कुछ ना बोले। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमें साकेत खड़े रहने और खामोश होने के लिए तैयार रहना चाहिए जब तक खुदा ना बताए कि क्या करना है। इंतजार करते हुए तकरीबन 7 मिनट गुजर गए और उन्होंने अपना सर उठाया और कहा, ए बाप हमें एक कर, यसु हमें एक कर, पाकरू हमें एक कर, आमीन। लेकिन मैं आपसे सच्चाई से कहूंगी कि खुदा का मसा और हुजूरी इस कदर ज्यादा थी कि मैं उसे महसूस कर सकती थी। इसलिए आज रात आपको इंतजार करना है, और जब आप इंतजार में होंगे तो कुछ मौसीकी भी बज रही होगी, लेकिन आप इबादत के इख्तिताम पर खुदा की हुजूरी में इंतजार करेंगे, और सिर्फ एक ही मकसद के लिए कि पाक रूह की कुव्वत और मामूरी को अपनी जिंदगी के लिए हासिल करें। मैं यकीन रखती हूं कि आप में से बहुत से लोगों को खुदा छुएगा कि जिसका आपने पहले कभी तजर्बा ना किया होगा। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ओ ये क्या बात कर रही है, हमारे चर्च में तो ऐसा नहीं होता, मुझे तो ये अजीब सी बात लगती है। सुने बाइबल क्या कहती है कि खुदावन का इंतजार करने वाले असर नौ जोर हासिल करेंगे। वो उकाबों की मानिंद बालों पर से उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे, वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। इफिसियों 3:16 पाक रू हमें कुव्वत दे, तसल्ली दे, नसीहत कर, रहनुमाई कर, दुआ करना सिखा, हमारी शिफायत कर। मैं इस आयत को अपने और शौहर के लिए, अपने बच्चों के लिए, पोतों के लिए, मिनिस्ट्री पार्टनर्स के लिए हर रोज नाम लेकर खुदा के हुजूर दुआ के लिए इस्तेमाल करती हूं। कि वो अपने जलाल की दौलत के मुआफिक तुम्हें ये इनायत करे कि तुम उसके रूह से अपनी बातनी इंसानियत में बहुत ही जोर आवर हो जाओ। अगर आप किसी ऐसे शख्स के साथ रहते हैं जो अजाब है, तो आपको उसके लिए दुआ करने की जरूरत है कि वो रूह से मामूर हो जाए। और अगर आप दूसरों के लिए अजाब है, तो अपने लिए दुआ करें कि रूह से मामूर हो। सुने ये बहुत ही शानदार आयत है। यही जिंदगी गुजारने का तरीका है। खुदा ने मुझे अंदरूनी तौर पर कुव्वत देकर मजबूत किया। अगर आप अंदर से काफी मजबूत हैं, अगर आप रूहानी तौर पर काफी मजबूत हैं, तो मुझे परवाह नहीं कि कितने सूरमा आपके खिलाफ आएंगे। आप उनसे डर के नहीं भागेंगे, बल्कि आप कहेंगे कि उनके मुकाबले को चलें, क्योंकि हम काबिल हैं। हम वो सब कुछ करने के काबिल हैं जो खुदा हमसे चाहता है कि हम करें। मैं काफी पुरजोश हूं। मैं सच्चाई से कहूंगी कि अक्सर हम अपने मसले पर बहुत ज्यादा गौर करते हैं। आपको यह रवैया तर्क करना होगा। और पैदाइश की किताब में एक सूरत हाल है जो मुझे पसंद है। मैं इसे पढ़ूंगी तो नहीं, लेकिन चलें आइए इसे पढ़ लेते हैं। पैदाइश 15 बाब की पहली 6 आयत। मैंने इरादा बदल लिया है। इन बातों के बाद खुदावंद का कलाम रोया में अब्राम पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, ए अब्राम तू मत डर, मैं तेरी सिपर और तेरा बहुत बड़ा अजर हूं। जी अजर। अब्राम ने कहा, ए खुदावंद खुदा, तू मुझे क्या देगा, क्योंकि मैं तो बे औलाद जाता हूं और मेरे घर का मुख्तार दमिश्की अलीअजर है। फिर अब्राम ने कहा, देख तूने मुझे कोई औलाद नहीं दी। तब खुदावंद का कलाम उस पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, ये तेरा वारिस ना होगा, बल्कि जो तेरे सुलुप से पैदा होगा वही तेरा वारिस होगा। लेकिन जरा ठहरे, क्योंकि ये दिलचस्प होने वाला है। देखें, दरअसल बात यह है, ये एक मसला था, क्योंकि अब्राहम तकरीबन 100 साल का था और वो बाप बनने की उम्र से ज्यादा हो चुका था और सारा भी तकरीबन बूढ़ी और 90 बरस की थी और वो इस उम्र में औलाद पैदा नहीं कर सकती थी। और खुदा उनको कह रहा है, तुम्हारी अपनी औलाद होगी। अब मैं नहीं जानती, शायद अब्राहम सारा के बुढ़ापे को देखता रहा हो और अपने बुढ़ापे पर भी ज्यादा गौर किया हो। शायद उन्होंने ऐसा ही किया। लेकिन खुदा ने कुछ दिलचस्प किया। उसने कहा, आइए 5वीं आयत में देखें, वो उसको बाहर ले गया और कहा कि अब आसमान की तरफ निगाह कर और अगर तू सितारों को गिन सकता है तो गिन ले। और उससे कहा, तेरी औलाद ऐसी ही होगी। मेरा ख्याल है कि ये दिलचस्प है कि अब्राहम को यकीन दिलाने के लिए ऐसा करना पड़ा। अगली आयत में लिखा है, और वो खुदावंद पर ईमान लाया और उसने उसे उन हालात से निकाला जिनका वो आदी हो चुका था। उसे बाहर लाना जरूरी था कि वो नई रोया हासिल करे कि खुदा क्या कुछ कर सकता है। मेरा ख्याल है इस हफ्ते में आप में से बहुत से यही कुछ कर रहे हैं। आप अपने खैमा से बाहर आए हैं और नई रोया हासिल कर रहे हैं। आप तवानाई हासिल कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि जब आप घर वापस जाएंगे तो सब कुछ फर्क होगा, बल्कि मैं ये कहूंगी आप यकीनन फर्क इंसान होंगे। और अगर आप तब्दीली के साथ वापस जाएं तो आप सूरमाओं को मारने वाले होंगे। मैं आपको सूरमाओं को मारना सिखा रही हूं। आमीन। सिर्फ ख्वाहिश ही ना करें कि काश ये मुश्किलात खत्म हो जाएं, बल्कि कहें कि मैं काबिल हूं कि एक ही बार अपनी जिंदगी की मुश्किलात पर गालिब आऊं, क्योंकि खुदा मेरे साथ है और पाक रूह की कुव्वत मेरे पास है। शायद मुझे ये सब पसंद तो नहीं, लेकिन मैं मसीह में जो मेरी कुव्वत है वो सब कर सकती हूं जो मुझे करने की जरूरत है। खुदा आपकी मुश्किलात से ज्यादा बड़ा है। वो आपकी बुरी आदत से बड़ा है और आपकी तमाम माली जरूरियात से ज्यादा बड़ा है, आपकी तमाम बीमारियों से भी। वो तनहा बच्चों की परवरिश करने की मुश्किल से भी बड़ा है। आपके तकलीफ दे माजी से, धुंधले मुस्तकबिल से, अगर चाह आपकी जिंदगी में अब भी कुछ ऐसा है जो आपकी झुंझुलाहट का बाइस है। क्या कोई सुन रहा है कि मैं क्या कह रही हूं? देखें, पौलुस ने इसे जिस्म में कांटा कहा। शायद आप ये जानते हैं, मैं नहीं जानती। शायद किसी के वालदैन के लिए जिस्म में कांटे की तरह है, या शायद आपके ससुराल में से कोई, शायद आपका कोई बच्चा जिसे आप प्यार करते हैं लेकिन पसंद नहीं करते। बताने की जरूरत नहीं, आप समझ गए हैं, लेकिन यह सच है। जी हां, लेकिन मैं इस ताल्लुक से मजीद कुछ नहीं कहूंगी। अगर आप सबर करें तो शायद उनको पसंद करें जब वो बड़े हो जाएं। दूसरा करंथियों 12:60। लगता है आज मैंने इन बातों से खुद को मुश्किल में डाल लिया है। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि अक्सर खुदा हमारी जिंदगी में मुश्किलात को इजाजत देता है कि वो कुछ देर तक रुकी रहें, जितनी देर शायद हम ना चाहें। यानी कोई चीज जो हमारे सर पर मंडलाती रहे और हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए कि हम कहीं फखर ना करने लगे, और इस फखर से बचने के लिए और बहुत ज्यादा बुलंदी और अजमत और अहम मकाम और मुकाशफों की ज्यादती के बाइस मेरे जिस्म में कांटा चुभोया गया, यानी शैतान का कासिद, ताकि मेरे मुक्के मारे और मैं फूल ना जाऊं। सच यह है कि हम ये नहीं जानते कि ये क्या था। शायद ये कोई जिस्मानी कमजोरी थी या कोई शख्स था जो उसे सताता था। इसके बारे में मैंने 3 बार खुदावंत से इल्तमास किया कि ये मुझसे दूर हो जाए, मगर उसने मुझसे कहा, अब जरा गौर करें, मुझसे कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमजोरी में पूरी होती है। बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमजोरी पर फखर करूंगा, ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। गौर करें, क्योंकि मेरी कुदरत कमजोरी में पूरी होती है, यह हमारी कमजोरी में ज्यादा मौसर होती है। आमीन। इसलिए जब आप कमजोर हों तो दरअसल आप खुदा में मजबूत हो सकते हैं, जो कि आप अपनी ताकत से शायद कभी नहीं हो सकते। हालात पर नजर ना करें कि आप फितरी एतबार से क्या नहीं कर सकते, और ये तसव्वुर करें कि आप खुदा में ये नहीं कर सकते। तो हकीकत यह है कि आप खुदा में सब कुछ कर सकते हैं जो आपको करने की जरूरत है। खुदा आपको मजबूत करेगा। ये ना कहें कि मैं उस शख्स को बर्दाश्त नहीं कर सकती, मेरी उसे जान छोड़ा, ये मेरी बर्दाश्त से बाहर है, बल्कि कहें कि खुदावंद अगर तेरी मर्जी है और तू यही चाहता है कि करूं, तो फिर मैं यकीन रखती हूं कि मुझे इस सूरत हाल में नाखुश नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मैं बताना चाहूंगी कि खुदा ने आपको जहां भी रखा है तो इसी मकाम पर खुश होने का एक रास्ता मौजूद है। सुने, आपको ये पसंद नहीं आ रहा शायद। अगर आपका ख्याल है कि मैं इस सूरत हाल से खुश हूं, तो शायद आपको गलत फहमी है। देखें, क्या खुदा वाकई ये चाहता है कि आपको ऐसी सूरत हाल में रखे जहां खुशी और इत्मीनान नहीं है? शायद आप कहें कि ये तो खुदा की तरफ से नहीं है, ये शायद इब्लीस की तरफ से है। हो सकता है, लेकिन तो भी खुदा ही आपको छुड़ा सकता है। इसलिए जब तक खुदा ये इरादा ना करे कि आपको छुड़ाने का ये दुरुस्त वक्त है, तो अपने सफर से लुत्फ उठाने की आपको जरूरत है। अपनी हालत से लुत्फ उठाएं, क्योंकि आप अपनी मंजिल की जानिब बढ़ रहे हैं। शायद आपको अपना काम पसंद नहीं जो आपको करना पड़े, लेकिन इसकी हकारत ना करें या बेजार ना हो कि आपका हर दिन बदहाली का शिकार हो जाए। अच्छा रवैया अपनाएं, काम पर जाएं, इस काम के लिए शुक्रगुजार हूं और कहें, खुदा मेरी कुवत है और मेरा जोर है जो तूने मुझे दिया है, मैं इसमें इस वक्त खुश हूं। सिर्फ अपना रवैया दुरुस्त करने की जरूरत होती है। आप जानते हैं के पाक रूह हमें मसा करता है। वाओ, कहां लिखा है कि वो मसा करता है? देखें, पूरी दुनिया में ज्यादातर मसीही इस लफ्ज के बारे में जानते भी नहीं है। मसीह का मतलब मसा शुदा है, और पाक रूह हमें खुदा की मर्जी और इरादे के लिए मसा करता है कि हम वो काम करें। इसलिए जब आपको कुछ करने के लिए मसा किया जाए, तो आपको खास फजल दिया जाता है, खास सलाहियत, खास कुवत दी जाती है, तो हम ये आसानी से कर लेते हैं। सुनिए, मसा का मतलब मसा शुदा है। दाऊद ने सूरमाओं को मारा, उसने जाति जूलियत को मारा, लेकिन क्या जानते हैं कि उसने ये काम सैमुएल से मसा होने के बाद किया कि वो इसराइल का बादशाह हो, और फिर उसने सूरमाओं को मारने की जुरत की। अपनी मुश्किलात से अपनी ताकत से लड़ने की कोशिश ना करें, بلکہ پاک روح کے مسا سے ان پر غالب آئیں۔ پہلا یوحنا 2:20 میں لکھا ہے، اور تم کو اس قدوس کی طرف سے مسا کیا گیا ہے۔ سب کہیں میں پاک روح سے مسا کی گئی ہوں، میرے اندر قابلیت ہے، صلاحیت ہے، میں خدا کی قدرت سے کسی بھی طرح کے حالات سے گزر سکتی ہوں۔ آپ کے پاس مسا کرنے والا مسا ہے، آپ کے پاس مسا ہے۔ مجھے یہ پسند ہے، اس کا مطلب ہے ملنا، کہ ہر جگہ ملنا یا بدن پر رگڑنا۔ اس لیے آج جب آپ خدا کی حضوری میں انتظار کریں تو آپ کو پاک روح کے تیل سے اچھی طرح ملا جائے گا۔ میں چاہوں گی کہ آپ اپنے ذہن کو کچھ دیر کے لیے موقوف کریں تاکہ صرف قبول کریں۔